सत्यवचन
नमस्कार
नंबर 206
बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से लुका रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओं हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम सत्यवचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी प्रभु की दया से कुशल हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु न्याय करने के विरुद्ध पश्चाताप के पक्ष में शिक्षा देता है। यहाँ फिर यीशु शब्द के दिन एक अति पीड़ित स्त्री को चंगाई प्रदान करता है। यीशु यरूशलेम की ओर जा रहा है, परंतु अपनी शिक्षा देने और चंगाई करने की सेवा से पीछे नहीं हटा है। यहूदी यरूशलेम में फसह के पर्व का आनंद मनाने जा रहे थे, परंतु यीशु यरूशलेम के लिए रोया। आइए अब हम देखते हैं न्याय और पश्चाताप। लुका रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 1-5 पद में हम पढ़ते हैं, उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लोहू पिलातुस ने उन्हीं की बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होगे। या क्या तुम समझते हो कि 18 जन जिन पर सिलोह का गुम्मट गिरा वे दब कर मर गए यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नाश होगे। पिलातुस ने कुछ गलील वासियों का संहार करके उनका लहू बलि किया था और 18 लोगों पर सिलोह का गुम्मट गिरा जिससे वे मर गए, और उनकी समझ में इन लोगों को परमेश्वर ने पाप का दंड दिया था। यीशु ने उन आडंबरियों से कहा कि यदि वे पश्चाताप करके मन नहीं फिराएंगे तो उनका भी विनाश निश्चित है। इस गद्यांश में हमारे लिए कुछ अति उत्तम सबक है। सबसे पहली शिक्षा हमारे लिए यह है कि किसी कष्ट उठाने वाले मनुष्य को हम दूसरों की तुलना में पापी न कहें। कष्ट आने का अर्थ यह नहीं है कि उस व्यक्ति ने पाप किया है और वह दंड पा रहा है। दूसरी शिक्षा यह है कि मसीह में विश्वास लाने का अर्थ यह नहीं है कि आप कष्टों से मुक्त हो गए हैं। आप महाक्लेश से निस्संदेह बच जाएंगे क्योंकि आप प्रभु के हैं, परंतु यहां कष्ट आपके साथ रहेंगे। मेरे मित्र, एक और शिक्षा यह है कि आपको छोड़ किसी और पर कष्ट आए तो आप यह न सोचें कि आप उससे अधिक धर्मी जन हैं। यह तो हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको चिताने के लिए उसे कष्ट दिया है। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अंजीर का वृक्ष फल नहीं दे रहा था। लुका 13 उसके 6-9 पद में हम पढ़ते हैं, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो रहने दे, मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, सो आगे को फल दे तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। फलों से रहित अंजीर का वृक्ष मेरे विचार में इसराइल का प्रतीक है। उस वृक्ष के स्वामी को उससे फल पाने की आशा थी, परंतु जब उसमें फल नहीं लगे तो वह निराश हो गया। उस वृक्ष से फल पाना उसका अधिकार था। फल ना पाने पर उसने निर्णय लिया कि उसे काट डाला जाए। इसराइल के लिए आशीषों की प्रतिज्ञाएं थी, यदि वे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, और यदि उन्होंने इसे इनकार किया तो श्राप उन पर था। इसराइल पर परमेश्वर ने विशेष ध्यान दिया था, उसे फल लाना था, परंतु वह फल नहीं लाया। उन्होंने मसीह का तिरस्कार किया और यहां तक कहा कि उसका लहू उन पर और उनकी संतान पर हो। हम मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसके 25 पद में इसे देखते हैं, उन्हें परमेश्वर ने दंड दिया और वे परमेश्वर के कहे अनुसार अन्य जातियों में बंदी बनाए गए। मित्रों, यह अति रोचक बात है कि वे आज भी अपने देश में शांति से नहीं रह पा रहे हैं। रूस और अरब राष्ट्र उन्हें कष्ट नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर दंड दे रहा है। इसराइल परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है, परमेश्वर उन्हें अपने देश में ले आएगा। वे आज अपने देश लौट रहे हैं, परंतु अविश्वासी मन से, जिसका परिणाम है कि वहां शांति नहीं है। विश्व की गतिविधियों में परमेश्वर के हाथ का यह प्रमाण है। अब हम आगे देखते हैं, कुबड़ी स्त्री को चंगा करना। लूका 13 अध्याय उसके 10 से 14 पद में हम पढ़ते हैं, सप्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था, और देखो एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। इसलिए कि यीशु ने सप्त के दिन उसे अच्छा किया था, आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, सो उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सप्त के दिन नहीं। बाइबल में जितने भी रोगों का उल्लेख किया गया है, उनमें यह रोग सबसे अधिक दुखदायी था। अब समस्या उसे चंगा करने के कारण नहीं उठी थी। फरीसियों को परेशानी इस बात की थी कि यीशु ने सप्त के दिन उसे चंगा किया था। मेरे प्रिय मित्रों, सप्त के दिन यीशु द्वारा चंगाई की सेवा ही विरोध का कारण था। यह स्त्री 18 वर्षों से पीड़ित थी। लूका ने उसकी स्थिति का जो शब्द काम में लिया है, वह तकनीकी शब्द है जिसका अनुवाद संभव नहीं है। वह कमर से नीचे झुकी हुई थी, इस प्रकार कि उसका सिर उसके पांव के पास था। बेभावत कहते हैं कि वह दोहरी हो गई थी, उसकी दशा बड़ी दयनीय थी। लूका 13 अध्याय उसके 15 और 16 पद में आगे लिखा हुआ है, यह सुनकर प्रभु ने उत्तर देकर कहा, हे कपटियों, क्या सप्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? और क्या उचित नहीं था कि यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सप्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? मुझे समझ में नहीं आता है कि यह स्त्री क्यों शैतान के बंधन में थी। वह अनैतिक स्त्री नहीं थी, वह नियमित आराधना में आती थी। आराधनालय में ही तो हमारे महान वैद्य ने उसे कहा कि वह मुक्त हो जाए, और वह तुरंत स्वस्थ हो गई तथा परमेश्वर का महिमा भी किया। उसे यीशु द्वारा स्पर्श किया जाना आवश्यक नहीं था, परंतु उसके विश्वास को दृढ़ करने के लिए यीशु ने उसे छुआ। यीशु का स्पर्श व्यक्तिगत संपर्क को दर्शाता है। हमारे लिए भी यीशु के व्यक्तिगत संपर्क की आवश्यकता है। आराधनालय के सरदार ने उसे झिड़का, परंतु ध्यान दे कि वह चंगाई पाने की आशा से आराधना में नहीं आई थी। आराधनालय का व्यवहार निश्चय ही विचित्र था। यह विधि विधान के प्रति अधिक चिंतित था। उसे इस असहाय स्त्री से सहानुभूति नहीं थी, जो 18 वर्षों से इस शारीरिक दुर्बलता की शिकार थी। उन धार्मिक अगुओं के लिए शब्द का विषय अधिक महत्वपूर्ण था। शब्द उनके लिए कम कष्टकारी जुआ बन गया था। आज भी शब्द का पालन एक विवाद का विषय है। प्रिय मित्र, धर्म के संबंध में महत्वपूर्ण बात उस पर वाद विवाद करना नहीं, उस पर आचरण करना होता है। हम लूका 13 अध्याय उसके 17 पद में पढ़ते हैं, जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए, और सारी भीड़ उनकी महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि मनुष्य यद्यपि यीशु की बातों को प्रसन्नता से सुनते थे, परंतु उन पर आचरण नहीं करते थे। धार्मिक बातों को अपना कर उनके बारे में कठोर बन जाना और यीशु को बाहर कर देना मनुष्य के जीवन की संभावना बन जाती है। आप वाद विवाद में प्रवीण हो सकते हैं, परंतु मुख्य प्रश्न तो यह है कि क्या आपने मसीह को अपने मन में स्थान दिया है? इसका कोई विकल्प नहीं है। क्या आप जीवन की परेशानियों से दोहरे हो गए हैं? यीशु के पास अपनी परेशानियां और पाप ले आइए। आप किसी भी समय उसके पास आ सकते हैं। वह आपकी आवश्यकता पूरी करने की प्रतीक्षा में रहता है। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, राई का दाना और खमीर। लुकार्ची सुसमाचार 13 अध्याय उसके 18 से 21 पद में हम पढ़ते हैं, फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य किसके समान है, और मैं उसकी उपमा किस से दूं? वह राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया, और वह बढ़कर पेड़ हो गया, और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों में बसेरा किया। उसने फिर कहा, मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दूं? वह खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिलाया और होते होते सब आटा खमीर हो गया। मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि राई का दाना मसीह वर्ग के बाहरी परिदृश्य का प्रतीक है। संस्थाएं और कलिसियाएं, राई का पौधा एक झाड़ी है, पेड़ नहीं। मसीह गतिविधियां महान रूप धारण किए हुए हैं, परंतु उनमें मसीही गुण नहीं है। यहां मुख्य बात है कि चिड़िया जो बसेरा करती हैं, वे शैतान का प्रतीक है जो मसीही संस्थानों और कलिसियाओं में सक्रिय हैं। खमीर भी दुष्टता का प्रतीक है। खमीर शब्द लगभग 98 बार अर्थात 98 बार बाइबल में आया है, पुराने नियम में 75 बार और नए नियम में 23 बार। कुछ लोगों के विचार में खमीर सुसमाचार है जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो जाएगा और संसार को बदल देगा। जहां तक शांति और राज्य का प्रश्न है, मसीह के आने और अपना राज्य स्थापित करने तक ऐसा कुछ नहीं होगा। व्यवस्थित कलीसिया भी उसके राज्य की स्थापना नहीं कर सकती है। मसीह अपने समय में आएगा और राज्य की स्थापना करेगा। हम यरूशलेम के मार्ग पर यीशु की शिक्षाओं के बारे में देखते हैं। इस समय यीशु यरूशलेम जा रहा है और मार्ग में वह जनसमूह को शिक्षा देता जा रहा है। हम लूका 13 उसके 22 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। लूका अध्याय 9 और उसके 51 पद में हमें बता चुका है कि वह क्रूस उठाने के लिए यरूशलेम जा रहा है। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। यह हमारे उद्धारकर्ता की अंतिम यरूशलेम यात्रा थी। हम लूका 13 उसके 23 से 30 पद में पढ़ते हैं, और किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो, तब तुम कहने लगोगे कि हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैं नहीं जानता, तुम कहाँ से हो। हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, जब तुम इब्राहिम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे, और पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे, और देखो कितने पिछले हैं वे प्रथम होंगे और कितने जो प्रथम हैं वे पिछले होंगे। यह प्रश्न उसने क्यों पूछा, इसे समझना कठिन है। हो सकता है कि वह मन की स्वच्छता से यह प्रश्न पूछ रहा था। मसीह के आश्चर्य कर्मों के कारण अनेक जन उसके पीछे हो लिए थे, परंतु जब उन्होंने देखा कि उसके पीछे चलने में कष्ट उठाना पड़ता है तो वे लौट गए। यीशु के पीछे आने का और फिर लौट जाने का क्रम चलता रहता था। और अंत में एक दिन मरकुस लिखता है 14 अध्याय उसके 50 पद में, सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। यीशु ने तो स्पष्ट कर दिया था कि उसके पीछे चलने में हानि उठाना होगा, अर्थात कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि यह प्रश्न अनुमान लगाने का था। अतः यीशु ने इसका स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। यीशु ने उससे कहा कि वह अपने उद्धार को सुनिश्चित करे। यीशु ने यहां यह भी स्पष्ट कर दिया कि उद्धार पाने वालों में अनेक वे होंगे जो अब्राहम, इसहाक और याकूब की संतान नहीं है। हम लूका 13 अध्याय उसके 31 से 33 पद में पढ़ते हैं, उसी घड़ी कितने फरीशियों ने आकर उससे कहा, यहां से निकलकर चला जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूं और तीसरे दिन पूरा करूंगा, तो भी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यवक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए। मित्रों, फरीशियों को चेतावनी देते हुए यीशु हेरोदेश को लोमड़ी कहता है। सच है, मनुष्य पशु रूप जन्म तो नहीं लेता है, परंतु पशु के स्तर तक नीचे अवश्य गिर जाता है। प्रभु यीशु मानव मुक्ति और अपने पुनरुत्थान का अनावरित संकेत देता है। हम आगे देखते हैं कि यीशु रोया। लुकार जी सुसमाचार 13 अध्याय उसके 34 और 35 पद में हम पढ़ते हैं, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालती है और तेरे पास भेजे गए उन्हें पत्थरवाह करती है, कितनी ही बार मैंने यह चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठी करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे करूं, पर तुमने यह ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक तुम न कहोगे कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। यहां पर हम देखते हैं कि वह यरूशलेम के लिए चिंता व्यक्त करता है, उस नगर के लिए जो उसे क्रूस पर चढ़ाएगा। वह महाराजा का नगर है। मत्तीरची सुसमाचार 5 अध्याय उसके 35 पद में हम पाते हैं महाराजा के नगर के लिए भविष्यवाणी करता है और अपने फिर से आने की भविष्यवाणी भी करता है। उसका फिर से आना महिमामय एवं उल्लास का होगा। मेरे मित्रों, अध्याय 13 यहां पर समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 14 से जारी रखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि यरूशलेम ने उसे घात किया, परंतु उसकी प्रतिज्ञा है कि वह फिर आएगा और महिमा में आएगा। अब हम अध्याय 14 में देखेंगे कि यीशु ने दृष्टांतों के द्वारा शिक्षाएं दी। किसी फरीसी के घर भोज की यह घटना और दो दृष्टांत यहां पर हैं, जिन्हें केवल लूका अपने सुसमाचार में लिखता है। गुंबद बनाने का और राज्य द्वारा युद्ध की तैयारी का, ये दोनों दृष्टांत शिष्यता से संबंधित हैं। अंत में यीशु एक प्रश्न पूछता है, नमक का स्वाद चला जाए तो क्या होगा। आइए हम देखते हैं फरीसी के घर यीशु की दावत। यह दूसरी बार है कि यीशु किसी फरीसी के घर भोजन करने गया। लुकार्ची सुसमाचार 14 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, फिर वह शब्द के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर में रोटी खाने गया और वे उसकी घात में थे। मित्रों, सत्य तो यह है कि इस फरीसी ने यीशु की कोई गलती पकड़ने के लिए उसे घर बुलाया था। पहला पद परिदृश्य का वर्णन करता है, भोज से पूर्व का दृश्य, और यही तनाव का कारण बना। हम 14 अध्याय उसके 2 पद में आगे पढ़ते हैं, और देखो, एक मनुष्य उसके सामने था जिसे जलंधर का रोग था। मेरे विचार में यीशु को भोज पर बुलाना उसकी सद्भावना नहीं, यीशु के लिए फंदा लगाना था। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने जानबूझकर उस रोगी को वहां रखा था। यीशु ने उनसे प्रश्न पूछा और वे उससे उत्तर न दे सके, अर्थात देने से डरे। हम लूका 14 अध्याय उसके 3-5 पद में पढ़ते हैं, इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा, क्या सब्त के दिन अच्छा करना उचित है कि नहीं? परंतु वे चुपचाप रहे। तब उसने उसे हाथ लगाकर चंगा किया और जाने दिया, और उनसे कहा कि तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर जाए और वह सब्त के दिन उसे तुरंत बाहर ना निकाल ले। मेरे मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि यीशु जानता था कि उन्हें यदि कोई आवश्यकता पड़ी तो वे निश्चय ही वे सब्त के दिन उसे पूरा करेंगे, परंतु वे यीशु के समक्ष इसे स्वीकार करना नहीं चाहते थे। यीशु ने कहा कि इसी कारण मैं इस मनुष्य को कष्ट मुक्त प्रदान कर रहा हूं। तब हम लूका 14 उसके 6 पद में पढ़ते हैं, वे इन बातों पर कुछ उत्तर न दे सके। इस घटना के कारण भोज पर तनाव पैदा हो गया। तब हम आगे देखते हैं लूका 14 उसके 7 पद में, जब उसने देखा कि नेवताहारी लोग क्यों कर मुख्य मुख्य जगहें चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा। मित्रों, यहां पर अतिथियों के लिए व्यवहार की शिक्षा की बातें कही गई है। उन दिनों में टेबल या कुर्सियों का चलन नहीं था। अतिथियों के लिए तख्त लगाए जाते थे जो 4 श्रेणियों में विभाजित होते थे। इस दृष्टांत का दृश्य कुछ ऐसा ही है कि भोज पर अतिथियों में युवा फरीसी और वृद्ध फरीसी भी शामिल होते थे। जब भोज की पुकार हुई तो सब एक स्थान ग्रहण करने के लिए टूट पड़ते थे। वहां एक वृद्ध फरीसी भी था। उनका स्वभाव ऐसा था कि बैठने के लिए महत्वपूर्ण स्थान घेरा जाए। यह वृद्ध फरीसी भी ऐसा ही करता आया था, परंतु अब वृद्धावस्था के कारण उसमें फुर्ती नहीं रही थी, अतः महत्वपूर्ण स्थानों पर अन्य जन आश्रित हो गए थे और इसे चौथी श्रेणी में स्थान मिला था। आप कल्पना कर सकते हैं कि वे स्थान लेने के लिए कैसे दौड़ रहे होंगे। प्रभु यीशु उन्हें शिष्टाचार की बातों को सिखाते हैं। मेरे मित्रों, आज मेरे लिए और आपके लिए भी यह बहुत आवश्यक है कि हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। क्या आज मैं भी या आप भी इसी प्रकार की दौड़ में शामिल हैं कि आपको अच्छे स्थान मिले? यदि आप अभी भी ऐसा कर रहे हैं तो आपके पास मौका है कि प्रभु यीशु के पास आएं, अपने जीवन को उसके पास में समर्पण करें और उन स्थानों को पाएं जो प्रभु यीशु आपको आपके जीवन में देना चाहते हैं। आइए आज हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में अर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें ताकि जो वचन आज हमने सुने हैं ये वचन हमारे जीवन के लिए आशीषमय और लाभकारी हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थी वचन के लिए, जिसके माध्यम से आज आपने हमें से हर एक श्रोता भाई बहनों के साथ में बातचीत किया है और हमें इस बात को आपने सिखाया है कि हमें आपकी निकटता में किस रीति से जीवन को व्यतीत करना है। हमें उन सदूकी और फरीसियों की नाई नहीं, परंतु एक अच्छे विश्वासी की नाई जीवन जीने के लिए आप हमारी सहायता करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन भाई बहनों के लिए भी जो दुखी हैं, निराश हैं, चिंता में हैं, परेशानियों में हैं, बीमारी में हैं। प्रभु, आप उनकी भी सुधि लीजिए, उनकी भी सहायता कीजिए ताकि वे भी आपकी और अधिकाई से महिमा कर सकें। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके सारे आशीषों के लिए। हमारे श्रोता भाई बहनों को आप अपनी बहुतायत की आशीष प्रदान करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, नया हौसला मैंने जीने का पाया, जीवन सजाया सजाया। जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, नया हौसला मैंने जीने का पाया, जीवन सजाया सजाया। जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, जब से मसीहा मेरे दिल में है मेरी जिंदगी में थे नफरतों के साए, मेरी जिंदगी में थे नफरतों के साए, अपने हुए थे पराए, प्यार किसी ने दिखाया दिखाया। जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, नया हौसला मैंने जीने का पाया, जीवन सजाया सजाया। जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, जब से मसीहा मेरे दिल में है,
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है जा, जरा मत वाले ख्वाबों में जो खोया है जाग, जरा मत वाले। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है जाग, जरा मत वाले ख्वाबों में जो खोया है जाग, जरा मत वाले। सच बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई, सच बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई, अच्छा नहीं है देख संभल जा, यीशु से है जुदाई, यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में जो खोया है जाग, जरा मत वाले ख्वाबों में जो खोया है जाग, जरा मत वाले। ख्वाब सुनहरा इसमें जो फंस जाए, ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा इसमें जो फंस जाए, रोए तड़पे चैन न पाए, घुल घुल के मर जाए, मन का मैल धुला, मन का मैल धुला, ख्वाबों में जो खोया है जाग, जरा मत वाले ख्वाबों में जो खोया है जाग, जरा मत वाले। अपने जीवन में अपना मीत बना ले।